समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आपका परिक्रमा में। और स्टूडियो की घड़ी बता रही है शाम के हो गए हैं 4:30, यानी रोज का समय चलने का आपका हमारा परिक्रमा पर। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, उसके बाद चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे उनसे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल की गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा में आज आपके साथ हूं मैं मुनीश शर्मा, और हमारे साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार मुनीश। वेल, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू बी विद यू एंड टू आवर लिसनर्स, वेरी वार्म वेलकम, गुड डे एवरीबॉडी, एंड वी विल बिगिन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 FM। टुडे विद मी शगुन चोपड़ा एंड मुनीश, वी आर एब्सोल्युटली थ्रिल्ड टू प्रेजेंट यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, देन आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। वेल, लेट मी ड्रॉप अ हिंट, इट्स अबाउट अ बेवरेज, अ ग्रेट बेवरेज विच वी सिप इन एट this particular time only. Also, we have reports, capsules, tributes at the end of the program. So, listeners, make sure that you stay with us till the very end. We are first beginning with the news headlines.
जी हाँ, सबसे पहले मुख्य समाचार। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोगामुख में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, गरीब और मध्यम वर्ग का कल्याण पार्टी की सर्वोच्च प्राथमिकता।
लोकसभा पासेस आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026, राज्यसभा पासेस द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026।
और मार्च में वस्तु और सेवा कर का संग्रह 8.8% बढ़कर 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2026 में इसमें 8.3% की वृद्धि हुई।
Enforcement Directorate conducts raids on two locations in Kolkata in extortion-related money laundering case.
पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 195.50 रुपए की वृद्धि।
Human rights activist raises Balochistan's issues in United Nations, calls on global community to hold Pakistan accountable.
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स से।
So this is our segment Dateline India, and I was telling you about an aromatic beverage. So today we bring you the rich aroma and timeless charm of something truly, well, Indian tea. Tea or chai, this is not just a beverage. Well, in India, it's an emotion, Munish.
बिल्कुल, चाय का भावनाओं से एक गहरा लगाव है ऐसा समझा जाता है
जी।
और चाय का एक ताजा कप आपको एकदम से एक नई दुनिया में नई भावनाओं के साथ पहुंचा देता है बेशक।
राइट फ्रॉम द बसलिंग स्ट्रीट्स टू आर पीसफुल होम्स, एवरी सिप इट टेल्स अ स्टोरी, राइटली सो। सो लेट्स आस्क आवर लिसनर्स समथिंग, वेल, रेटोरिकल क्वेश्चन। डिड यू नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड? आई एम श्योर यू माइट बी नोइंग दैट। From the lush gardens of Assam to the scenic hills of Darjeeling, Indian tea is famous globally. And let's not forget the variety, Munish. Masala chai, ginger tea, cardamom tea. Each region adds its own flavor and love to this humble drink, tea.
बिल्कुल सही कहा शगुन। दरअसल हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत चाय के उस पहले कप के बगैर होती ही नहीं है
जी,
क्योंकि ये मन को ताजगी देती है, बातचीत का सिलसिला शुरू करती है और लोगों को आपस में जोड़ती है, चाहे सड़क किनारे की वो कोई टपरी हो या घर की कोई आरामदायक रसोई। चाय दिलों को जोड़ती है, बारिश हो, कड़ाके की सर्दी हो या फिर कामकाज से भरा कोई व्यस्त दिन, ये हर मौके पर एक बेहतरीन साथी है। इसलिए अगली बार जब आप चाय का वो गर्म कप अपने हाथों में थामें तो ये बात जरूर याद रखें कि आप सिर्फ चाय नहीं पी रहे हैं बल्कि आप भारत की संस्कृति के हिस्से को जी रहे हैं।
Well, a great way to put it. And today, well, Prime Minister Narendra Modi went to a tea garden in Dibrugarh, Assam this morning and interacted with women working there. Prime Minister lauded their contribution to the state's globally renowned tea industry. The Prime Minister said that Assam is globally known for its tea, and then noted that with the upcoming semiconductor plant in Morigaon, the state will soon gain recognition for semiconductor chips.
एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी. असम यानी चाय. दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी. अब असम को दुनिया चाय के साथ साथ चिप से भी पहचानेगी. वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चिप का उत्पादन शुरू हो जाएगा. ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा. आने वाले समय में फोन हो, गाड़ियां हो, टीवी, फ्रिज हो, ऐसे सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं.
दोस्तों, असम के मशहूर गायक भूपेन हजारिका साहब ने चाय के बागानों पर जो गीत लिखे वो तो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन डिब्रूगढ़ के चाय बागान में महिलाओं ने जो एक गीत गाया, जगत जननी मां, वो मां को नमन करता है. और सचमुच अद्भुत है कि वो अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से किस कदर जुड़ी हुई हैं.
जय जगत जननी जी माता, हम बालक किसी नहीं जाने, कुछ भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना.
How beautiful. So Assam remains one of the world's largest tea producing regions, with districts such as Dibrugarh, we were telling you about it, Tinsukia and Jorhat forming the backbone of the industry. So the sector employs lakhs of workers and plays a vital role in India's tea exports and regional economy as well. India, being the largest producer as well as the largest consumer of black tea in the world, well, tea has become one of the most important commercial crops of the country. The commercial production of tea started in India in the late 1830s, before which the tea plant was growing wild in the jungles of northeast Assam.
दोस्तों, सरकार भारतीय चाय को बागान क्षेत्र में सबसे आगे लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है. भारत ने दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी चाय के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग्स भी प्राप्त किए हैं. भौगोलिक संकेत दरअसल एक नाम या चिन्ह होता है जिसका इस्तेमाल कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल, जैसे कोई शहर, क्षेत्र या देश से जुड़े होते हैं. GI का इस्तेमाल एक प्रमाणन के रूप में काम करता है कि उत्पाद में उसके भौगोलिक मूल के कारण कुछ खास गुण है या उसकी एक विशेष प्रतिष्ठा है. भारतीय चाय के लोगों का एक प्रमाणन चिन्ह के रूप में पंजीकृत हो जाना एक आरामदायक पेय के तौर पर इसकी गुणवत्ता का प्रमाण है.
सो राइट मुनीश, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टी. सम ऑफ देम हैव कूलिंग इफेक्ट एंड एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर. एंड द इंडियन टी, कमिंग बैक टू इंडियन टी, इट इज एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड. सम ऑफ द मेजर इम्पोर्टर्स ऑफ इंडियन टी इंक्लूड रशिया, UK, US, Singapore, Sri Lanka, Poland, Germany, Afghanistan and more. There are distinct tea growing regions in India which are geographically separated, thereby producing entirely different varieties of tea in terms of aroma and in terms of flavor. These regions include Darjeeling, Assam, Nilgiri.
जी हाँ, दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की तो चाय है ही मशहूर, लेकिन दोस्तों शायद आप जानते हो या न भी जानते हो तो गौर कीजिए कि हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा में चाय होती है. कभी उसका भी मजा लीजिए साथ में इसके. और भारत की असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी जो चाय है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चायों में से बेशक एक मानी जाती है. जहां एक तरफ ब्लैक टी निर्यात में सबसे आगे है और देश के कुल चाय निर्यात का 96% हिस्सा इसी का है, वहीं दूसरी ओर ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी और लेमन टी जैसी अन्य चाय की किस्में भी भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख में योगदान देती हैं. भारत सरकार ने टी बोर्ड के माध्यम से चाय का उत्पादन बढ़ाने, भारतीय चाय के लिए एक खास पहचान बनाने और चाय की खेती से जुड़े परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की पहल की हैं.
राइट, सो लेट्स टेक आवर लिसनर्स टू दार्जिलिंग. Nestling in the foothills of the snow-covered Himalayan range, Darjeeling is home to this exclusive tea. The cool and moist climate, the soil, the rainfall and the sloping terrain all combine to give Darjeeling tea its unique muscatel flavor. The combination of natural factors that give Darjeeling tea its unique distinction, it is not found anywhere else in the world. The tea has over the years acquired the reputation of being the champagne of teas. Great name.
जी हाँ दोस्तों, बाघ और एक सींग वाले गैंडे की धरती असम में चाय की जबरदस्त पैदावार होती है और यहाँ की चाय का जो स्वाद है वो बहुत ही समृद्ध गाढ़ापन लिए और चमकदार होता है। जो लोग चमकदार और कड़क चाय को पसंद करते हैं उनके लिए असम की चाय ही सबसे बेहतरीन है, क्यों शगुन?
Exactly. Now let's take our listeners to Nilgiris. So the Blue Mountains or the Nilgiris, they are situated in South India. And let's imagine the picturesque range of undulating hilly landscapes where tea is grown. So the climate conditions favor the fine, elegant flavor and brisk liquor of Nilgiri teas. So if you like a fragrant tea with good body and superlative flavor, Nilgiri should be the one for you.
जी हाँ दोस्तों, चाय सदियों से सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से एक रही है। प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक जीवन शैली तक यह हमेशा एक निरंतर साथी बनी रही है। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि चाय अब सिर्फ एक पेय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका रूप और भी विकसित हो गया है। आज हमें चाय से प्रेरित उत्पाद लगभग हर जगह मिलते हैं। स्वादिष्ट ग्रीन टी केक, क्रीमी ग्रीन टी आइसक्रीम, ताजगी देने वाली आइस लेमन टी और भी बहुत कुछ। जैसे मुझे याद आता है, एक बार पालमपुर में मैंने गुजारी थी दो रात हिमाचल प्रदेश में, और वहां मुझे मिले थे चाय के बागान में चाय के पत्तों के पकौड़े। कभी जरूर उनका लुत्फ लीजिए। तो ये रोजमर्रा के व्यंजन जो है, इस बात के कुछ उदाहरण है कि कैसे चाय रचनात्मक और स्वादिष्ट तरीकों से हमारे दैनिक आहार का एक हिस्सा बन गई है।
सो मुनीश, यू सेड लेमन टी, आइस लेमन टी, एंड नाउ आई एम क्रेविंग इट। एंड वेल, मेनी पीपल नो अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टी एज वेल। मोस्ट ऑफ अस रीच फॉर दैट कप सिंपली बिकॉज इट टेस्ट ग्रेट मुनीश, एंड इट फील्स रिफ्रेशिंग, राइट? एंड वेदर इट्स अ हॉट कप ऑन अ चिली मॉर्निंग और अ चिल्ड ग्लास of iced lemon tea on a summer afternoon, tea has a way of fitting into every mood, every moment. But we can't ignore the goodness packed into those tiny green leaves. The health benefits of tea, they're undeniable. Very happy to know that. And listeners should listen patiently and intently to it, from boosting metabolism to providing antioxidants. And also looking ahead, tea is set to make an even bigger impact, especially in the health and wellness industry.
बिल्कुल सही कहा आपने शगुन, और इसीलिए कहते हैं lot can happen over a cup of tea.
True.
और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ खास उनके पास।
First, Munish, we'll take our listeners to Goa. Panuji. So Goa has emerged as the front runner in implementing the central government's Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana 2.0. The initiative aims to empower rural youth with skills and employment opportunities. Well, we have more on this from our correspondent. Listen in.
Goa is setting a national example in rolling out DDU-GKY 2.0, with 12 training centers already operational across the state. Around 1,200 students have enrolled so far, and the target is to train 12,000 youth over the next two financial years. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the scheme is being effectively implemented to boost skills and livelihoods among rural youth. He was speaking at a program held at Lok Bhavan.
Proud to say that the Goa is the first state in India to launch DDU-GKY 2.0 effectively. So far, the 18 project implementing agency have been empaneled. 12 training centers across the North Goa and South Goa is already operational. Over the 1,200 youth have enrolled, and the target of the 2,500 youth training has been set for this financial year. And for another two financial years, the 12,000 youths will be trained by this placement.
The scheme focuses on aligning training with industry demand and ensuring at least 70% placement. The government has also sanctioned loans worth 509 crore rupees in recent years to support youth. Goa has become the first state in the country to fully operationalize DDU-GKY 2.0, strengthening its vision of a skilled and self-reliant workforce. This is Brian for Parikrama, Panaji, Goa.
दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि महज 20 रुपए के एक मामूली से शुल्क में आपको किसी व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा अनुभव भी मिल सकता है? जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन ने अपने एक अभिनव प्रयोग से इसे सच कर दिखाया है। बीते 3 महीनों में 1 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस हाईटेक एसी वेटिंग हॉल का लाभ उठाया है, जिससे न सिर्फ यात्रियों को सुकून मिला है बल्कि रेलवे की झोली में भी 25 लाख रुपए की शानदार रकम आ गई है। तो आइए जानते हैं कैसे एक छोटा सा निवेश यात्रियों के सफर को और सुहाना बना रहा है।
अहमदाबाद का कालूपुर रेलवे स्टेशन इन दिनों अपनी पटरियों के साथ साथ अपनी प्रीमियम सुविधाओं के लिए भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम रेलवे द्वारा शुरू किया गया यह अत्याधुनिक एसी वेटिंग हॉल मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आंकड़ों की जुबानी कहे तो पिछले 90 दिनों में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने प्लेटफॉर्म की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर इस शांत और ठंडे माहौल को चुना है। इस प्रोजेक्ट की सफलता और सबसे बड़ा प्रमाण रेलवे को हुई 25 लाख रुपए की रिकॉर्ड कमाई है। इस सफलता और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं अहमदाबाद डिवीजन के डीआरएम श्री वेद प्रकाश।
3 महीने में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो करीब करीब 25 लाख के आसपास है और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे यूज किया है। अगर हम ये देखें कि लोगों का स्टे यहाँ पे, तो इट इज सरप्राइजिंग कि जितने लोग रहे उसमें घंटे ज्यादा यूज, लोग तो रहे ही रहे और घंटे भी ज्यादा यूज किए।
यहाँ यात्रियों के लिए साफ सुथरे शावर, अत्याधुनिक शौचालय और एक बेहतरीन फूड कैंटीन जैसी सुविधाएं भी 2400 घंटे उपलब्ध है। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए निजता का ध्यान रखते हुए अलग बैठक व्यवस्था और छोटे बच्चों के लिए एक विशेष बेबी केयर रूम भी बनाया गया है। यात्रियों के इस अभूतपूर्व प्रतिसाद को देखते हुए कालीपुर का यह सक्सेस मॉडल अब देश के अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के किफायती एसी वेटिंग हॉल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। रेलवे का यह बदलता हुआ चेहरा इस बात का प्रतीक है कि तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए सामान्य मानवी के सफर को और भी आरामदायक बनाया जा सकता है। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खुंट।
फ्रॉम अहमदाबाद लेट्स नाउ हेड टू कोहिमा इन नागालैंड। फेक डिस्ट्रिक्ट, अ क्वाइट रेवोल्यूशन इन फार्मिंग इज टेकिंग रूट, लेड एंटायरली बाय वुमेन। In Chizami village, over 200 traditional seed varieties are being preserved, protecting not just crops, but culture, climate resilience and food security. Well, our Kohima correspondent brings you this story.
Nestled in the hills of Nagaland, the women of Chizami village in Pak district are safeguarding a rich agricultural heritage. At the Chizami Community Seed Bank, managed by the Chizami Women's Society with support from the Northeast Network, over 200 traditional seed varieties are carefully preserved. From vibrant rice strain to hardy millets and colorful maize, each seed tells a story of resilience. Prime Minister Narendra Modi, in his recent Mann Ki Baat address, praised women of Chizami for strengthening food security and preserving indigenous knowledge.
नागालैंड के चिजामी गांव से भी एक बहुत प्रेरक प्रयास सामने आया है। चिजामी गांव की महिलाएं मिलकर 150 से अधिक वैरायटी के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख रही है। इन बीजों को एक कम्युनिटी सीड बैंक में संरक्षित किया जा रहा है, जिसे गांव की महिलाएं ही चलाती हैं। इनमें चावल, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और कई तरह की जड़ी बूटियां शामिल है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे प्रयास हमें यह बताते हैं कि समाधान हमेशा कहीं दूर नहीं होता। कई बार हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयास ही हमें सबसे मजबूत रास्ता दिखाते हैं।
Mrs. Kezinepo Tseha, chairperson of the Chizami Women's Society, shared that it was a proud moment for the community, especially the women, to be mentioned on a national platform like Mann Ki Baat.
When I heard the Prime Minister mention our effort on a national platform like Mann Ki Baat, I feel deeply honored and encouraged. It was a proud moment for our community, especially our women who have worked tirelessly over the years.
Launched in 2018, the initiative has grown into a strong example of community-led conservation. Currently, the seed bank preserves around 200 varieties of traditional crops, including diverse types of rice, millets, pulses and vegetables. These crops are not only climate resilient and nutritious, but also hold deep cultural significance for the community. The women's group now aims to strengthen the seed bank's infrastructure while engaging youth to carry forward traditional knowledge. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
Marking the sacred Bak Full Moon Poya, the High Commission of India in Sri Lanka organized a cultural exhibition in Sri Lanka celebrating the life and teachings of Gautam Buddha through the lens of modern Indian art. Here's a report. Let's listen in.
To mark the sacred Bak Full Moon Poya, the High Commission of India in Sri Lanka hosted a special cultural exhibition titled Buddham Sharanam Gacchami at the Mulagandakuti Pirivin Mahaviharaya in Colombo. The exhibition featured artworks on the life and teachings of Gautama Buddha by icons of modern Indian art, highlighting India's enduring spiritual legacy. Visitors also explored India's rich Buddhist heritage through displays of sacred sites linked to the Buddha's journey across the subcontinent. Adding a special touch, Sinhala editions of Jataka tales were distributed to young student monks and Dhamma school children, sharing timeless stories and values with the next generation and celebrating the deep civilizational ties between India and Sri Lanka. For Parikrama, Ahmed Muin Faruqi from Colombo.
The Department of Personnel and Training, Capacity Building Commission and Karma Yogi Bharat will collectively organize a week-long Sadhana Saptah starting tomorrow in New Delhi. Chairperson of Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan, has said that the whole effort during the Saptah will be to see how capacity building aligns itself with realizing the objectives of Viksit Bharat.
We are celebrating Sadhana Saptah from 2nd of April to 8th of April. This marks 5 years of foundation of Capacity Building Commission and also the beginning of the Mission Karma Yogi 5 years since. The whole journey has been a journey of a huge amount of learning, huge amount of insights coming from individual public servants to organizational to systemic foundational shifts that have happened in the way capacity building is being seen as opposed to as different from training.
Listeners, as part of our series People's Padma on Akashvani, in our upcoming episode, we speak to Sri Raghuveer Tukaram Khedkar, who has carried forward the traditional art form Tamasha. Sri Raghuveer Tukaram Khedkar will be honored with Padma Shri for his contribution in the field of art.
तमाशा लोगों की जान था जब सिनेमा नहीं था जब नाटक नहीं था जब मोबाइल नहीं था जब टीवी नहीं था मेरे पिताजी थे वो हीरो थे मेरी माँ हीरोइन उनके जो प्रोग्राम होते थे दर्शक जब प्रोग्राम छूटने के बाद उनको मिलने को आते थे वाह बेहतरीन काम किया आज आपने मेरा जो दौर रहा तमाशे का वो बहुत अच्छा दौर था मुझे बचपन से ही पब्लिक ने चुना था मेरे कॉमेडी को बहुत पब्लिक हंसती थी इतना भारी पद्मश्री खिताब मेरे को मिला है ये सुनकर मेरे जो पुराने अनुभव वो सब मेरे सामने आ गए और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया
To listen to the conversation, tune in 200.1 Akashvani Gold today evening at 5:10 p.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. It will also be broadcast tomorrow morning at 9:10 a.m.
और दोस्तों आइए अब हम याद करें महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करें उन महान व्यक्तित्वों की भी है जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन.
We remember freedom fighter Avanti Bai Lodhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857.
Avanti Bai Lodhi was born on the 16th of August 1831 in Sivni, Madhya Pradesh. She married Prince Vikramaditya Lodhi, the son of Raja Lakshman Singh of Ramgarh. Rani Avantibai Lodhi took up the reins of administration of the state in her hands on behalf of her minor son, Amar Singh, following the Raja's ill health. When Raja Vikramaditya Singh died in 1851, the British authorities decided to pass the Ramgarh's administration over to a court of ward in total disregard of the Rani. She strongly resented the British action.
During the First War of Indian Independence, Rani Avantibai joined the independence activists by commandeering the Ramgarh troops and confronted the British in Sohagpur. Rani Avantibai defeated the British in the battle. Stung by the defeat, the British came back with vengeance and launched an attack on Ramgarh. Avantibai resorted to guerrilla warfare to fend off the British army. In the decisive battle in the hilly region of Devharigarh on the 1st of April 1858, the combined forces were defeated by the British. The Rani had to retreat to Ramgarh, where she and her followers were encircled.
While many accounts claim that Avantibai took her own life to evade capture when the defeat was imminent, other accounts claim that she died in captivity in August 1858. She is remembered through performances and folklore and continues to inspire people. We salute the great freedom fighter.
We also remember Martyr Anand Charan Malik, a shopkeeper in the Dharamtola area of Kolkata, who died on the 1st of April 1930.
Charan Malik, along with other people of the area, was dissatisfied with the new rules of trade implemented by the British administration. They objected to the new rules on the ground that their livelihood will be adversely affected.
और दोस्तों आज जयंती है केशव बलिराम हेडगेवार की, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना समूचा जीवन हिंदू समाज और देश के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार पहले क्रांतिकारी थे लेकिन बाद में हिंदू संगठनवादी बन गए। जीवन के अंतिम समय तक वो देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अथक प्रयास करते रहे और संगठन के ही लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवन के प्रारंभ और मध्यकाल में क्रांतिकारी थे। उनका अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों से संपर्क था। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने वंदे मातरम आंदोलन भी चलाया था।
So listeners, today we are also remembering Kailash Vajpayee, the preeminent figure of his generation in the world of Hindi letters. He wrote in English as well, poetry as well as prose. He received numerous literary and cultural awards, published close to 20 books and made about as many documentary films.
और दोस्तों आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं जबीन जलील को, जो एक अभिनेत्री थी हिंदी सिनेमा की और 20 से ज्यादा उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और पहली फिल्म थी उनकी गुजारा, जो आई थी 1954 में और जिसमें उनके हीरो थे करण देवान। उसके बाद लुटेरा, चार मीनार, न्यू दिल्ली, जीवन साथी, फैशन, रागिनी और ताजमहल और वचन जैसी कई उनकी फिल्में आई। तो चलिए याद करते हैं उनके कुछ यादगार गीत भी।
Listeners, we are remembering Jabeen Jaleel, one of the finest actresses of Hindi cinema's golden era. And well, she won the National Film Award for Best Actress for her performance in the Punjabi film Chaudhary Karnail Singh.
और दोस्तों अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए मुनीश शर्मा और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा को यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को चाहते हैं दोबारा सुनना तो लॉग इन जरूर कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारा मोबाइल ऐप भी आप देख सकते हैं न्यूज ऑन AIR, जिस पर 24 घंटे आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम। दीजिए अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।